Hey guys, welcome back to the Value Investing Podcast. Thank you so much for all your comments. बहुत 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 खुशी होती है हमें देखे कि आपको इन चीज़ों में से यू नो वैल्यू मिल रही है ना, आप कुछ सीख रहे हैं, विच मेक्स अस रियली हैप्पी. एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल इफ़ यू हैवन डन सो. प्लीज़ लीव अ लाइक इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो जॉइन अर टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ चेक इट आउट. सो ज़्यादा देरी ना करते हुए लेट्स गेट इन टू IRCTC. वैल्यूएशन क्या है इसकी, इंट्रेंसिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, शेयर स्प्लिट जो है वो स्टॉक स्प्लिट, इज़ इट गुड, शुड यू इन्वेस्ट इन द कंपनी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वगैरह क्या है, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट आर गोइंग फॉर द कंपनी, एंड या इज़ इट ओवर वैल्यूड. आई थिंक दैट इज समथिंग दैट एवरी वन इज पॉन्डरिंग एंड दैट्स वाई वी विल डिस्कस दैट इन दिस वीडियो. चलो गाइस, लेट्स गेट इनटू इट. So about the company, Indian Railways Catering and Tourism Corporation Limited provides catering and hospitality, internet ticketing, travel and tourism and packaged drinking water services in India. इनके mostly वैसे चार verticals हैं. एक है catering, I wrote down the margins here. Catering के margins हैं 12.37%. Rail Neer, that's the water, they are the only one who can provide catering, water and e-tickets for the Indian Railways. Rail Neer जो है उसका margin है 30.52%, and then internet टिकटिंग का मार्जिन है 79.82%, विच इज़ जस्ट आउटरेजियस. जो रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन है इंटरनेट टिकटिंग की वो सिर्फ 35% है, बट जो प्रॉफिट मार्जिन हैं दे आर जस्ट अमेजिंग. 80% के आसपास ऑलमोस्ट उनके मार्जिन हैं उस बिजनेस में से, एंड दैट इज़ ऑलमोस्ट आई थिंक 75% ऑफ देयर टोटल इनकम. सो ये वेरी डिपेंडेंट ऑन दैट, बट उसमें मार्जिन इतने अच्छे हैं कि यू डोंट इवन हैव टू लाइक यू नो वॉल्यूम्स जैसे और बढ़ते रहे इनके मार्जिन और बढ़िया होते रहेंगे एंड the income will start keep going up from that. So yeah, that is something to consider. Uske baad key metrics, is time PE ratio hai 224.41. This is because of the COVID year. Profit margin 30.03%. ROC 67.55%. Mere isko calculate karne ka different hai tarika, so this is not going to agree with anywhere you look at it, because mera jo I calculated in a different way. Debt to equity ratio 0.66%, bahut kam debt hai inke paas. Promoter ownership 67.40%, like kafi high promoter ownership. Government of India is the biggest kaise kehte hain owner. So yeah, why to invest? IRCTC has the ultimate moat of all moats. The government of India owns the majority of the company, and IRCTC is the only company in India that is authorized to provide catering services, online tickets and packaged drinking water at railway stations in India. The margins and the ROC are second to none. The margins on the e-ticketing business are almost 80%, as I already mentioned. The catering business made a loss last year, but it is driven by volume. So catering business jo hai thoda sa loss mein tha, but jab catering turn around karega, jaise next year jab kya se kehte hain margin ke volume badh jayengi, to they'll have a small margin from it. 2020 mein iske 12.37% margins the, which is not too good, but it's good enough. So yeah. And then, okay, why not to invest? So there's not too many reasons. मतलब मैं सोच नहीं पा रहा था कि क्यों आप invest नहीं करेंगे IRCTC में. इनका moat इतना बड़ा है, there's literally no competition, 100% monopoly. But I think another thing that needs to be considered, जो कभी कभी मतलब as retail investors हम भूल जाते हैं, वो है valuation, कि कितने सालों की growth जो है इसमें already price in हो रही है. So I think even if मैंने जो valuations करी है, I didn't want to use the 2021 numbers, because the thing is if you use the number of the COVID year numbers, then I think इनका थोड़ा सा unfavorable हो जाती क्या से कहते हैं valuation. So I doubled the 2020 numbers, which are still less than, sorry, I doubled the 2021 numbers, which are still less than the 2020 numbers. But उसके accordingly valuation करी है मैंने, so that you know there's more थोड़ी fairness आएगी इस valuation में. बट इवन दो अगर हम 2020 के नंबर्स भी यूज़ करें, तो इस टाइम पी अराउंड 60 की बनती है. सो आई थिंक 40 या 50 से ज़्यादा आपको पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी चले जाता है. सो जस्ट विद दैट मेट्रिक यू वुड से कि द कंपनी इज़ ओवर वैल्यूड बाई ऑलमोस्ट लाइक 33% मिनिमम. सो इफ इट्स ट्रेडिंग एट एंड दिस इज आई थिंक आई मेड दिस पोस्ट बैक इन व्हेन द प्राइस वाज अबाउट 2200. सो इस टाइम पी जो है वो 65-70 के आसपास होगी. सो जस्ट विद दैट बेसिक कैलकुलेशन आई थिंक 40% के आसपास द स्टॉक इज़ ओवर प्राइस. सो इफ़ यू आर सिटिंग एट 2650 मल्टीप्लाइड बाय 0.40, सो दैट टर्न्स आउट टू बी 1590. सो उस कैलकुलेशन से ही 1590 के आसपास की आई थिंक वैल्यूएशन बनती है, बट दिस इज़ वेरी रफ नंबर्स. आई एक्चुअली डिड अ इन डेप्थ इंट्रेंसिक वैल्यू कैलकुलेशन, विच वी कैन गो ओवर, सो दैट we can come to a better conclusion. So uske baad, now this is the intrinsic value calculation. Financials jo hain wo jisse jo incomes liye maine unko 2 times kiya maine March FY21 ka. Annual revenue growth 8%. Some may say this is conservative, but मेरे को लगता है कि एक level ऐसा आ जाएगा जहाँ पे maybe 10 years. So this is basically 8% जो है वो perpetuity में है. So आज से लेके infinite time तक हम assume कर रहे हैं कि growth 8% होगी, and that never happens. So that is why I didn't take 15% or 20% because that wouldn't have made any sense. और मेरे को लग रहा है कि अभी दोबारा से लोग जब बाहर जाएंगे और दोबारा से ट्रेन्स में ट्रैवल करना शुरू करेंगे, आई थिंक शुरू शुरू में लोग थोड़े से एप्रिहेंसिव होंगे. इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक द होल डिमांड इज गोना कम बैक राइट अवे. सो इट्स गोना बी अ लिटिल बिट स्लो. एंड ऑल्सो लाइक एज आई टेल यू ऑल द टाइम कि वैल्यूएशंस आर ऑल सब्जेक्टिव. एक वैल्यूएशन पे अराइव करने के लिए आपको बहुत सारे एस्टिमेट्स वगैरह लगाने पड़ते हैं, एंड देन ओनली यू गेट टू दैट पॉइंट. सो आई जस्ट यूज्ड अ बंच ऑफ एस्टिमेट्स व्हिच आई थिंक are conservative a little bit. They're not super conservative because my margin of safety aapko zyada requirement nahi hai. It's a moat business. It's almost not almost, it is a monopoly. So it like isme margin of safety, you don't need 50% margin of safety. So yeah, so this is also the numbers liye hain. Year 10 EBIT percent margin maine diya hai around 25% ka, which is again a little bit conservative. 31-32% ke paas ho sakta hai, maine 25% liya hai just to make sure, because agar inki jo catering business hai usme margins kam hai. So if they keep on growing, and the catering business, I think, is going to drop take down the margins a little bit lower. So yeah, intrinsic value calculation. So scenario one, jo hai 15%, agar aapki target rate of return hai, to iski intrinsic value 2736 banti hai. Target rate of return 20%, intrinsic value 2343. And scenario three, target return of 25%, intrinsic value 2023-36. Now the thing is, again, this intrinsic value jo cheez ki aap calculate karte hai, right? आप ईयर 10 तक एस्टिमेट कर सकते हैं नंबर्स. उसके बाद इट्स उसके बाद जो ईयर 10 से लेके इन्फिनिटी तक है वो एक तरीके से बड़ी अनसर्टन फिगर बन जाती है. तो आपको उसकी टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है. टर्मिनल वैल्यू मतलब आपको डिस्काउंट भी करना पड़ेगा उस चीज़ को. जैसे मानो अगर 15% अगर आज आपका जो डॉलर है इट इज रुपी है, इट इज़ वर्थ 1 रुपी, राइट. एक साल बाद अगर इन्फ्लेशन 6% है तो आपको रुपी की जो परचेसिंग पावर है वो 94 पैसे रह जाएगी. तो इसलिए और उसके बाद और 6% और कम हो जाएगी. उसके बाद 87-88 पैसे रह जाएगी. वैसे ही कम होती रहेगी फ्यूचर में जाते रहते. सो अगर आज अगर आपकी आप जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं, जो फ्यूचर कंपनी इनकम जनरेट करेगी, उसको आप डिस्काउंट कर रहे हैं आज की डेट में. जैसे अगर आप 100 रुपये एक साल में कमाएंगे और 100 रुपये आज कमाएंगे, उन 100 रुपये की वैल्यू जो आज कमा रहे हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू वो 100 रुपये जो आप आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद या 20 साल बाद कमाएंगे. आई थिंक दैट इज एन ऑब्वियस कॉन्सेप्ट जस्ट बिकॉज इन्फ्लेशन. सो दैट इज वेन यू आर डिस्काउंटिंग दीज नंबर्स, यू टेक अ हायर परसेंटेज. एंड आपके लिए वो नंबर्स अनसर्टन हो सकते हैं. कोई नहीं कह सकता कि आज से 15 साल बाद 2040 में 2036 में IRCTC होगी, विल इट बी अराउंड, वॉट काइंड ऑफ मनी दे वुड बी मेकिंग, नो वन नोज. सो इट्स जस्ट एन एस्टिमेट. सो दैट्स वाई डोंट पुट टू मच रिलायंस ऑन दीज नंबर्स, एंड दैट इज वाई वी हैव टू टेक मार्जिन ऑफ सेफ्टी. क्योंकि आप समझ सकते हैं जस्ट लाइक द वे आई एम टेलिंग यू अबाउट इंट्रेंसिक वैल्यू, इट सीम्स कि कितना कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है और कितना लाइक एस्टिमेट्स के ऊपर बेस्ड है सब कुछ. आप जस्ट बना रहे हैं नंबर्स एक तरीके से, विच इज़ द प्रॉब्लम विद क्या से कहते हैं अपने इंट्रेंसिक वैल्यू कैलकुलेशंस. बट दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेनी बहुत ज़्यादा जरूरी है. सो इफ यू हैव टू टेक अ 50% मार्जिन ऑफ सेफ्टी अकॉर्डिंग टू मी एट ऑल टाइम्स, बिकॉज ऑब्वियसली इंट्रेंसिक वैल्यू कैलकुलेशंस आर ऑल बेस्ड ऑन वैल्यूएशंस एंड सब कुछ सही जाएगा, देन दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. अगर 2 साल और कोविड के हो जाते हैं तो IRCTC की जो ये वैल्यूएशन हम जो कह रहे हैं दैट इज गोना गो बिहाइंड वे टू मच. सो इवन इफ यू टेक अ 40% मार्जिन ऑफ सेफ्टी, विच आई थिंक इज फेयर, लाइक यू नॉट टेक अ 50% मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इवन इफ यू टेक अ 35% मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो और 15% अगर आप रिटर्न जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि लेट्स से 70 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1900 के आसपास. आई थिंक 1900 सीम्स लाइक अ फेयर वैल्यूएशन टू मी, जैसे अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से या पी के हिसाब से देखें, तो मेरे ख्याल से 1900 के आसपास जो वैल्यूएशन है इसकी, दैट शुड बी अ फेयर वैल्यूएशन. And anything over that, I think you're overpaying for sure. So, इसलिए I think we think it should be around the score देना हो उसको 4.5 के आसपास देंगे हम, because just we think कि यार it is overpriced, there's no margin of safety. And अगले 3 या 4 साल की जो earnings growth है वो already priced in है stock के अंदर. And जिस हिसाब से हमारी जो retail investors की तादाद बढ़ रही है stock में, उससे मुझे लगता है कि इट्स गोना बी अ लिटिल बिट हार्डर फॉर द स्टॉक टू गो अप एज मच, बिकॉज़ द थिंग इज कि एक टाइम आता है, सैचुरेशन पॉइंट आता है जहाँ पे और पैसा अंदर एंटर नहीं कर पाता किसी स्टॉक के. एंड लॉट ऑफ पीपल हु आर लाइक यू नो लिटिल बिट सेफर इन्वेस्टर्स, दे आर नॉट गोइंग टू पे दैट अमाउंट ऑफ पी, जस्ट बिकॉज़ इट्स अ लॉट ऑफ लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी कि क्या पता उसको जाके आगे प्राइवेटाइज कर दें, यू नो ऑल दीज थिंग्स. सो यू कैन से कि अपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा बड़ी ली है, बट इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू हैव अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, स्पेशली इफ समथिंग इज ट्रेडिंग एट दोज काइंड हाई मल्टीपल्स. एंड जो बिजनेस है वो इफेक्ट हुआ है कोविड से, एंड कोविड इज़ नॉट कम्प्लीटली बिहाइंड अस, यू नो, लाइक अगले 2 साल तक कोविड चल सकता है, कोई और बीमारी आ जाए एंड स्टफ लाइक दैट. सो ऑलवेज हैव अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल. सो आई थिंक दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड अब जो स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, स्टॉक स्प्लिट आपको अगर नहीं पता तो स्टॉक स्प्लिट जो होता है, आई थिंक इट्स अ 5-1 स्टॉक स्प्लिट. सो उसमें क्या होता है कि जो 2700 का शेयर है, जो वट एवर द डेटा उस लिस्टिंग वाले दिन जब स्टॉक स्प्लिट होता है, उस दिन अगर मान लीजिए शेयर प्राइस 3000 का हुआ, तो एवरी शेयर विल बी ब्रोकन डाउन, उसकी फेस वैल्यू जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगी. सो इफ़ यू हैड 1 शेयर यू विल हैव 5 शेयर्स, इफ़ यू हैड 50 शेयर्स यू विल हैव 250 शेयर्स. सो आपके पास एक आपकी जो टोटल ओनरशिप है कंपनी में वो चेंज नहीं होगी, बस आपके जो शेयर की लिक्विडिटी है मेरे को लगता है उससे बढ़ जाएगी, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट बाय अ स्टॉक विच इज़ वर्थ $2600. एंड सैडली काफ़ी इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि जो स्टॉक प्राइस है अगर वो ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो और ऊपर नहीं जा सकता, कि जो 200 रुपये का शेयर है दैट इज़ वे बेटर देन 3000 का शेयर, इवन दो उसकी मार्केट कैप जो है वो आसपास भी नहीं होगी. सो उससे क्या होगा, उससे एक जो फैलेसी क्रिएट हो जाएगी मार्केट के अंदर कि अब शेयर जो है वो 600 रुपये का रह गया है, सो नाउ वी कैन यू नो अफोर्ड इट, सो लेट्स बाय. एंड देन आई थिंक दैट इज गोइंग टू एक्चुअली इंक्रीज द शेयर प्राइस इवन फर्दर. काफ़ी कंपनीज में ऐसा हुआ है, एप्पल ने स्टॉक स्प्लिट किया था लास्ट ईयर, उनकी भी सेम ही चीज़ हुई. उसके बाद टेस्ला ने स्टॉक स्प्लिट किया था, उनके साथ भी यही हुआ था. सो मेरे को लगता है कि इसकी जो लिक्विडिटी है वो और बढ़ जाएगी एंड द प्राइस विल बिकम अ लिटिल बिट हायर. बट द थिंग विद हायर लिक्विडिटी ऑल्सो इज कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसमें आपके पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो सिर्फ स्पेकुलेट कर रहे हैं प्राइस के साथ, उसकी जो प्राइस मूवमेंट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं. तो जब आप देखते हैं कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो ज़्यादा बढ़ रहा है किसी स्टॉक के अंदर, तो व्हाट जनरली हैपन्स इज दोज गाइज आर द फर्स्ट वंस टू लीव आउट एज वेल. इफ लाइक इफ द स्टॉक स्टार्ट टू फॉल ड्यू टू वन रीजन और अनदर, तो स्टॉक गिरता भी बहुत बुरी तरीके से. एंड दोज आर द अपॉर्चुनिटीज टू बाय. सो आई वुड से कि इफ यू हैव द स्टॉक डोंट सेल इट, कीप ऑन होल्डिंग इट. एंड दिस अगेन जस्ट वॉन्ट डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट इन्वेस्टिंग एडवाइस, दिस इज जस्ट एजुकेशन एंड दिस इज वट आई वुड डू. सो यू नॉट टू फॉलो दिस एज वी आर नॉट योर इन्वेस्टर एडवाइजर्स एंड यू शुड टॉक टू समवन हूज एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड एंड हूएवर लाइक मैनेजेस योर मनी. सो we would say ki if you hold the stock don't sell it. I think this is one that you can keep on forever if you have a long term perspective. If you are planning to buy it, I would say ki don't buy it at these levels. Let the price correct a little bit. And I think that would be how I would deal with this situation if I was in your shoes. And I would definitely buy it. Like we would definitely buy it if it goes down to say 2000 or something like this. If the PE comes around 50, I think you can start adding. But before that, I don't think it's worth it because aapka jo risk hai, downside risk is way higher than the upside potential. So, mere hisab se, main aapko ye bolunga. Aur ek cheez aur jo aapko dekhni chahiye isme, which is I love the fact about IRCTC, is jo unka cash flow generation hai, it is amazing. And that is why intrinsic value aapko thodi high lag rahi hogi, kyunki intrinsic value is based all on cash ke upar depend karta hai, ki cash kitna generate kar sakte hai company. Aur unke jo free cash flow generation hai, wo itni zyada robust hai ki aap aankhe band karke, you can close your eyes and this is a money printing business basically. So that is why intrinsic value higher hai, kyunki intrinsic value mein revenues are important but cash flow is even more important. So cash flow jo generation hai wo bahut zyada strong hai and I think that is why inki jo kya se kehte hain value hai stock ke andar jo higher PE hai, that is why it's a higher PE. Another thing to consider is ki jo inke dividends hain wo bahut zyada acche honge. Mere ko lagta hai inka payout ratio abhi around 40% ke aas paas hai. But I think as the company keeps on growing, reinvestment इनकी बंद हो जाएगी एक लेवल पर आके, क्योंकि there is nothing to grow, right? Like उस saturation point पर पहुँच जाएंगे. And then what they will do is they'll pay out very high dividend. So if you're an older person and if you are like investing for the long term, आपका perspective जो horizon है वो 20-30-40 years का है, तो आई थिंक यू कैन ऑब्वियसली ओन द स्टॉक, बट थोड़े कम लेवल में बाय कीजिए. एंड द डिविडेंड इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर दिस कंपनी. बट अगेन डिविडेंड में आपको टैक्स इंप्लीकेशंस भी देखनी जरूरी हैं. सो इफ दे एंड अप पेइंग से आई डोंट नो 5% डिविडेंड यील्ड अगर आपको पे कर रहे हैं ये, तो आपको ऑलमोस्ट अगर आप हाई इनकम टैक्स ब्रैकेट में हैं तो 30% आपका टैक्स भी जाएगा डिविडेंड के पीछे. तो दैट इज ऑल्सो समथिंग टू कंसिडर. बट आई वुड से कि राइट नाउ इफ यू हैव इट होल्ड इट, डोंट सेल इट. दिस इज अ स्टॉक दैट कैन बी हेल्ड फॉर एवर. If you're planning to buy it, I would say just like wait a little bit, buy it on a crash. And I think that would be it. So thank you so much guys. Subscribe karein, please like karein and join our Telegram channel. The link is in the description below. So thank you so much guys. Let me know what you think about this. Take care.